शांति। पुणे राहतनी से आप जो सभी भाई बहने मधुबन धरनी में भट्टी करने के लिए पधारे हैं, योग तपस्या भट्टी, आपका इस धरनी पर दिल से बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। और आपको इस भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य से परिचित कराने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। भट्टी का थीम महसूसता द्वारा संपूर्णता प्राप्त करना है और इसी विषय को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है महसूसता द्वारा संपूर्णता, ये बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट अचीव करने होते हैं। तो निर्विघ्न स्थिति हम कैसे बनाए अपनी, इस पर प्रकाश डालते हुए कैसे हम अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे, दीदी इस पर प्रकाश डालने के लिए हम सबके बीच में आए हैं। उससे पहले कि वे शुरू करें, मैं उनका परिचय आप सबको दे दूं। दीदी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। मुंबई महानगरी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1969 में बीएससी की एग्जाम देकर आप मई मास में मधुबन में आकर बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो पहली टीचर्स ट्रेनिंग चली उसमें पार्टिसिपेट किया और उसके फलस्वरूप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रूप में बाबा ने, दादियों ने आपको अलग अलग सेवा स्थानों पर भेजा, जिसमें से कुछ एक स्थान है राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि देश और विदेश की धरनी पर आप सेवा अर्थ गए, जहां सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। और 1976 में मधुबन में जब आप आए, आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही थी और वो अपॉर्चुनिटी थी दादी ने आपको मधुबन निवासी बनने का सुंदर ऑफर दिया और उसको आपने स्वीकार किया। तो 1976 से लेकर आज दिन तक आप इस धरनी पर रहकर देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 75 से भी अधिक देशों में भ्रमण करके बाबा का संदेश सब तक पहुंचाया है। न सिर्फ संदेश पहुंचाया है, कईयों के जीवन में बाबा की प्रवेशता कराई है। और इसके साथ साथ वर्तमान में आप हमारे हेडक्वार्टर में जो राजयोग शिविर चलते हैं उसके निर्देशिका हैं, डायरेक्टर हैं, और जो हमारी एजुकेशन विंग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं। मधुबन आंगन में विशेष पांडव भवन में पूरे ही साल भर जो प्रोग्राम्स होते हैं, डबल विदेशियों के सीजन में उनके प्रोग्राम्स और भारत के सीजन में आप भाई बहनों के भट्टियों के प्रोग्राम, तो ज्ञान योग के जो प्रोग्राम चलते हैं पांडव भवन में उसके आप कोऑर्डिनेटर हैं। और इसके अतिरिक्त दादियां तो अब अव्यक्त हो गई हैं, तो दादियों से, बाबा से, मम्मा से जो पालना ली है, उस पालना का अनुभव, उस पालना की भावना यहाँ आए हुए हर ब्राह्मण को देना, ये आपकी मुख्य सेवा वर्तमान में जो हम आपसे देखते हैं। तो आप इन 4-5 दिनों में इन सब बातों को अनुभव करेंगे। तो अभी मैं और ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, लेकिन आपका भी परिचय मैं दे देती हूँ पहले दीदी को। कि इस ज्ञान में चलते जिनको एक से पांच वर्ष हुए हैं, मतलब एक से पांच वर्ष के जो बच्चे हैं बाबा के, वे जरा हाथ उठाएं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो पांच से दस वर्ष के बच्चे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। जो दस से पंद्रह वर्ष के बच्चे हैं, बहुत बहुत स्वागत। 15 से 20 वर्ष के बच्चे, आपका भी मोस्ट वेलकम है। और जो 20 से अधिक वर्ष वाले बच्चे हैं, बाबा के हाथ खड़ा करें, बहुत बहुत स्वागत है। सभी ग्रुप में भाई बहने हैं और बाबा की ये यूनिवर्सिटी है जिसमें बालक और बूढ़े सब एक साथ पढ़ते हैं, है ना। और जो हमारी राज्यों का टीचर्स बहने हैं, वे जरा हाथ खड़ा करें। तो आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। और अभी हम सुनते हैं दीदी जी से निर्विघ्न स्थिति कैसे बनाएं। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। मेरे तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन तपोभूमि है, वरदान भूमि है, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, परिवर्तन भूमि है। जितनी महिमा करो मधुबन की, उतनी कम है। यहाँ पर जो भी आत्माएं आती है, वो बहुत कुछ अनुभव करके जाती है। प्यारे बाबा मम्मा सब दादियों ने यहाँ तपस्या की है। ब्रह्मा बाबा की चार धाम वो भी यहाँ ही है, जहाँ बाबा अपने शांति के प्रकंपन फैलाते रहे। दादियों का इतना प्यार सबको मिला, सबने अपने अंदर उस परमात्म शक्ति का अनुभव किया और जीवन में परिवर्तन लाया। तो ऐसी भूमि पर आप सभी पधारे हैं, बहुत ही बड़ा भाग्य है आपका। तो शिव बाबा हम बच्चों को अवश्य बहुत ऊंचा लक्ष्य देते हैं, बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। एक है लक्ष्य और दूसरा है उद्देश्य। इसको इंग्लिश में कहेंगे लक्ष्य को एम एंड उद्देश्य को ऑब्जेक्टिव। किस उद्देश्य से ये हमने लक्ष्य रखा है? तो उद्देश्य तो व्यापक होता है और लक्ष्य 2 साल का 3 साल का प्लान होता है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज ऐसे करते हैं ना। इसी प्रकार उस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं ना, भगवान क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? तो ये उद्देश्य हो जाता है। नरक को स्वर्ग बनाने, मनुष्य को देवता बनाने, हम सबको पावन बनाकर घर ले जाने, बहुत कुछ हम कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या लक्ष्य देते हैं, वो फिर छोटे छोटे लक्ष्य हो जाते हैं। तो उसके लिए बाबा ने पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाया। पहले तो हम क्या कहेंगे, शूद्र थे, न खुद को पहचानते थे, न परमात्मा को पहचानते थे, न जीवन के महत्व को ही समझते थे। हम कौन, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या हमें करना है, कुछ नहीं जानते थे। बस रोटी कपड़ा मकान के लिए ही लड़ते रहते थे या धन कमाने में लगे हुए थे, परिवार बनाने में लगे हुए थे। तो वो लक्ष्य रख करके हम संसार में चल रहे थे। लेकिन जब हम बाबा के बने, बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर सौगात दी हमारे जन्म की। कौन सी सौगात दी? दिव्य बुद्धि की, ज्ञान के तीसरे नेत्र की। जिस दिव्य बुद्धि या ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमें वो समझ आ गई, अपनी भी समझ आ गई, परमात्मा की भी पहचान मिल गई, जीवन का लक्ष्य का भी पता चल गया और उसके लिए क्या करना है वो भी हमें अनुभव हुआ। और जब ये दिव्य बुद्धि रूपी सौगात या दिव्य नेत्र ज्ञान का मिला तो महसूस हुआ कि हम कितने ऊंचे थे और अभी कहाँ आकर के गिरे हैं। लेकिन फिर उतना ही ऊंचा बनना है, ये हमें लक्ष्य मिला। तो हमें बाबा ने ब्राह्मण बनाया। शिववंशी तो थे ही, लेकिन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाया, ब्रह्मा मुख संतान बनाया, एक नया जीवन प्रदान किया, नया जन्म हमें मिला। और इस नए जन्म में हमने पहचाना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, इन सब की हमें सही पहचान मिली। समय को भी हमने पहचान लिया कि अभी कौन सा समय चल रहा है। जब तक ये ज्ञान नहीं था तो कुछ भी पता नहीं था। तो इस ज्ञान से जो नया जीवन हमें मिला उसके आधार से जीवन बदल गया। बाबा ने उस दिन भी कहा ना, नया जन्म लेते हैं तो पुराना जन्म तो भूल जाता है, नए जन्म में आते हैं तो ये नया जन्म ऐसा है जिसमें आने से वो पुराना जन्म भूल जाते हैं। भूलते हैं नहीं भूलते हैं? भूल जाते हैं ना। भूलना ही चाहिए, क्योंकि अगर पुराने जन्म में भी बुद्धि गई तो फिर इस नए जन्म का जो सुख है वो नहीं ले सकेंगे। लौकिक में भी हम देखते ना, अगर किसी को पूर्व जन्म की याद रहती है मान लो, तो उस जन्म का भी सुख चला जाता है ना। अब पूर्व जन्म में उसकी कोई पत्नी होगी, उसके कोई बच्चे होंगे, अब ये नया जन्म हो गया, 5-6 साल का बच्चा कहेगा ये मेरी पत्नी है ये मेरे बच्चे हैं, अभी तो नया जन्म लिया, तो चलो याद भी था परंतु उसको भुलाना पड़ेगा क्योंकि नए जन्म में वो संबंध बदल गए। तो अब तो बाबा ने हमको यही लक्ष्य दिया पहला कि बच्चे सब संबंध मेरे से जोड़ो, ये पहला लक्ष्य हमें मिला। जिनको हम भक्ति मार्ग में याद करते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अब प्रैक्टिकल में वो अनुभव करो, परमात्मा हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन, हर संबंध हमारा शिव बाबा के साथ है। लौकिक में तो कितने संबंध होते हैं और सब में बुद्धि फंसी रहती है। अब सब संबंध एक के साथ हो गए तो बुद्धि फ्री हो गई उन बातों से, क्योंकि एक के साथ ही सब संबंध है, एक को ही याद करना है और फिर एक का ही सुनना है, एक से ही सुनना है। पहले तो कितनों से सुनते आए, फिर क्या ये हाँ ये करे या वो करे, उसमें उसे उधेड़ बुन में ही रहे, एक कहेगा दूसरा कहेगा, तो उसी उलझन में ही उलझते रहे क्या करे क्या न करे, वो ये कहता है दूसरा वो कहता है। लेकिन अब हमें पता चला कि जो भगवान हमें कहते हैं वही हमको करना है, वही श्रेष्ठ श्रीमत है, बाकी तो सब मनुष्य मत है, परमत मन मत। अब उन सब से पार एक श्रीमत पर ही चलना है। और श्रीमत पहली पहली क्या मिली हमें, बच्चे तुम्हें पवित्र और योगी बनना है, ये श्रीमत हमें मिली, पवित्र और योगी बनना है। क्योंकि भगवान आए हैं सत धर्म की स्थापना करने लिए, तो सत धर्म की स्थापना पवित्रता और योग से ही हो सकती है। वैसे भी जो भी धर्म स्थापक आए उन्होंने पवित्रता के बल से ही धर्म की स्थापना की, इसीलिए उनको विरोध बहुत करना पड़ा। क्राइस्ट को उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा, कितना विरोध करना पड़ा, कितना विरोध हुआ उसके उसके अगेंस्ट क्राइस्ट का, तो फिर इतना विरोध कि आखिर उसको सूली पर चढ़ा दिया। क्योंकि जो समाज कर रहा था उसके बिल्कुल अपोजिट क्राइस्ट ने कहा, इसीलिए समाज ने उसको समझा नहीं तो फिर विरोध हुआ। तो भगवान जब आते हैं उसको कितना कम समझते हैं, धर्म स्थापकों को ही कितना कम समझा, तो परमात्मा को तो और ही नहीं समझेंगे। धर्म स्थापक तो फिर भी दिखाई देते थे, परमात्मा तो गुप्त है, उनका कार्य भी गुप्त है, सब कुछ उनका गुप्त है, इसलिए और भी मनुष्य मूंझ गए। लेकिन सबसे पहली श्रीमत यही दी, यज्ञ में जो भी समर्पित हुए सबको पहले यही आदेश दिया, बच्चे तुम्हें पवित्र और योगी बनना है। और जब ये आदेश दिया और वो छोटी छोटी कन्याएं थी, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, तो कितना विरोध सहन करना पड़ा बाबा को। लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुए, क्योंकि सत्यता की शक्ति थी, उस सत्यता की शक्ति से आगे बढ़े। उनको पता था सच की नाव हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो धर्म पिताओं को भी पता था कि भले आज ये इतना मेरे पर सितम सहन कर रहे हैं, लेकिन आगे चल करके इसी का नाम रोशन होगा। तो देखो क्राइस्ट ने जो सहन किया, आज कितना बड़ा आधी दुनिया क्रिश्चियनिटी को मानती है, क्राइस्ट को मानती है, उसने भी तो त्याग तो किया ना। लेकिन वो तो बाबा कहते हैं द्वापर युग से आए, और भगवान ने हमको इतना भाग्य दिया है खास भारतवासियों को कि तुम तो स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। तुम विश्व के मालिक थे, सारा विश्व तुम्हारे हाथ में था, धरती आकाश सब पर तुम ही राज्य करते थे, पर सब गंवा दिया। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से ये समझ दी कि कैसे तुमने ये गंवाया माया के वश होकर के, और माया तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इस दुश्मन को पहचानो और इसको जीतो। ये दुश्मन ने कैसे क्यों वार किया, दे अभिमान में आए, दे अभिमान में आने के कारण ही माया रावण का वार हुआ। अब फिर देही अभिमानी बनो तो तुम माया को जीत सकेंगे, और देही अभिमानी बन मुझे याद करो, मेरे से सर्व संबंध जोड़ो। तो ये पहला जो आदेश मिला जिसने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया, तो परिणाम स्वरूप हम इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़े। तो विघ्न तो आएंगे, ये तो हो नहीं सकता कि विघ्न न आए, क्योंकि माया का राज्य है। लेकिन जिसका साथी भगवान है उसको आंधी तूफान क्या रोक सकते हैं, ये भी हमें समझ मिली। इस बाबा कहो, बाबा की मदद मिलेगी, पर हिम्मत आपको रखनी है। भगवान मदद करने लिए तैयार है, पर उसके लिए हिम्मत हमारी चाहिए। ऐसे नहीं बाबा मदद तो आप करो, हिम्मत भी आप ही दो, इतने हिम्मत ही न अगर बन जाएंगे तो मदद कैसे मिलेगी। कोई भी कार्य करने लिए हिम्मत अपनी चाहिए, फिर मदद परमात्मा की मिलती है। दुनिया में भी मदद मिलेगी, लेकिन हिम्मत तो अपनी रखनी पड़ेगी ना। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अब तुम ब्राह्मण बने हो, देवता बनना है तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। विश्व का परिवर्तन करना ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, उसके लिए पहले स्व परिवर्तन। और स्व परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन करना है, पहले तो अपने इंद्रियों को जीतना है, फिर मन को भी जीतना है, फिर प्रकृति के जो आकर्षण है उसको भी जीतना है। सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक में जोड़ना, इसके लिए मेहनत है। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे मेहनत तो तुमने बहुत की भक्ति मार्ग में, अब बाबा कहते हैं मेहनत नहीं करो, मोहब्बत में रहो। मोहब्बत है तो मेहनत महसूस नहीं होती है। और मोहब्बत सदा कैसे रहे, उसके लिए बाबा कहते हैं अपने स्वमान में रहो। अपने स्वमान में रहो और शिव बाबा की महिमा गाते रहो। तो स्वमान और सम्मान, ये दोनों अगर साथ साथ है तो हमारी प्रगति होती रहेगी। और जब इस प्रकार की प्रगति होती रहेगी तो ऑटोमेटिकली विघ्नों को हम जीत सकेंगे। पुराने संस्कारों को जीतो, व्यर्थ संकल्पों को जीतो, पर बाबा साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं, मुश्किल भी नहीं। असंभव तो क्या, मुश्किल भी नहीं। परंतु ये विघ्न क्यों आते हैं, चाहे व्यक्तियों के विघ्न, चाहे अपने संस्कारों के विघ्न, चाहे कोई भी माया के आकर्षणों के विघ्न, ये इसीलिए आते हैं क्योंकि पुराने संस्कारों को अभी तक हमने जीता नहीं है। मैं मेरे को अभी तक जीता नहीं है। और बाबा यही कहते हैं, इस मैं को मारो। मैं कहने की आदत है तो मैं आत्मा, मेरा 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 कहने की आदत है तो मेरा बाबा, बस। क्योंकि यही मैं और मेरा, ये दोनों नरक के भी द्वार है तो स्वर्ग के भी द्वार है। मैं आत्मा हूँ, मेरा शिव बाबा है, ये स्वर्ग का द्वार खोलेगा। मैं फलाना हूँ, ये सब मेरा है, वो नरक का द्वार खोलेगा। तो इसीलिए बाबा ने हमें वो लक्ष्य दिया है। तो जब हम ब्राह्मण बनते हैं, उस ब्राह्मण जीवन में श्रीमत हमें मिलती है कि ब्राह्मण माना ब्रह्माचारी, जो ब्रह्मा ने आचरण किया उसी आचरण पर चलना है। अब ब्रह्मा के बदले ब्रह्म कह दिया है, ब्रह्म ज्ञान बाबा ने उस दिन भी कहा। ब्रह्म ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या है, कौन सा ज्ञान है, ब्रह्मा ज्ञान, शिव परमात्मा का दिया हुआ ब्रह्मा मुख से ज्ञान, ये ब्रह्मा ज्ञान। अर्थात आदि पिता के द्वारा परमात्मा ने जो ज्ञान दिया नई दुनिया की रचना के लिए, वो ज्ञान। फिर ब्रह्म मुहूर्त, सृष्टि का जो आदि काल है वो ब्रह्म मुहूर्त, ये संगम युग है, तो संगम युग का भी ज्ञान दिया। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत महिमा है भक्ति में भी। तो ये बेहद का ब्रह्म मुहूर्त है संगम। अभी भगवान हमें जगा रहे हैं, दुनिया तो सोई हुई है। सवेरे हम लोग 3:30 बजे 4 बजे के अंदर उठते हैं, तो हमारे लिए तो ब्रह्म मुहूर्त है, सवेरा है, नया दिन शुरू हो गया, और दुनिया के लिए तो वो रात है ना। कोई अगर भूल से भी 4 बजे उठ जाए, अरे अभी तो 4 ही बजे, अभी तो बहुत, अभी तो रात है। और हम क्या कहेंगे, रात है या प्रभात है? प्रभात है। तो दुनिया के लिए तो रात है, दुनिया तो कहेगी कलयुग है, और हम कहेंगे नहीं, कलयुग भी गया, हमारे लिए संगम युग है, प्रभात है, नया दिन शुरू हुआ है। तो इसीलिए ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म भोज, ब्रह्मा भोजन, जो देवताएं भी तरसते हैं उस भोजन के लिए, वो हम संगम पर वो ब्रह्मा भोजन, परमात्मा की याद में पकाया हुआ भोजन हम स्वीकार करते हैं, वही खाते हैं, वही हम भोग लगा कर फिर खाते हैं। अब ये सब नियम जो बाबा देते हैं, ये इस समय कितने काम के हैं, क्योंकि आजकल दुनिया में कुछ पता नहीं क्या भोजन में मिला देंगे, कुछ पता नहीं। तो भोजन और पानी, हाँ, इनका भी असर पड़ता, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, पानी जल का भी प्रभाव पड़ता है, जैसा पानी वैसी वाणी बन जाती है ना, कई कहानियाँ इस पर आ गई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी सुरक्षा पहले, इसमें अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए बाबा ने ये नियम बनाए हैं। और जो समय की मांग है वो बाबा नियम बताते हैं कि बच्चे पवित्र बनो, अब और संसार को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़ गया संसार, कोई सोचे और हम अपना परिवार और बढ़ाएं लौकिक, अब बाबा कहते ज़रूरत नहीं है। तो यही कहते ना, आप लोग सब पवित्र रहेंगे, हम सब पवित्र रहेंगे, ब्रह्मचर्य में रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तो हम क्या कहते हैं, दुनिया कभी और चलाना ही नहीं है, चलाना ही नहीं है ना। अब कोई फैक्ट्री में मशीन है, वो मशीन बिगड़ती जा रही है, और जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो ठीक नहीं है प्रोडक्ट, कोई भी उसका जो प्रोडक्ट है या जो वस्तु बन रही है वो ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे, बनाते जाएंगे भले नुकसान होता रहे, हाँ मशीन तो चलती रहेगी, लेकिन क्या करेंगे उस समय, क्या करेंगे, उसको रोकेंगे, भाई पहले मशीन ठीक करो फिर भले करो। तो अभी जो प्रोडक्ट आ रहा है, बाबा कहते हैं रचना भी कैसी दुखदाई, दुख देने वाली। बाबा तो पहले बहुत कहते थे मुरलियों में, क्या कहते थे, हाँ कैसे आजकल के बच्चे माँ बाप को कितना तंग करते हैं, नाम क्या ले, लेकिन ये सब कर्मों का हिसाब किताब तो है। तो अब और बाबा कहते अभी नए हिसाब किताब मत बनाओ, ज़रूरत नहीं है नए हिसाब किताब बनाने की, फिर उनमें फंस जाओगे, फिर कब छोड़ोगे, कब छूटेगा, वो तो मकड़ी की जाल की तरह है, मकड़ी अपना जाला खुद ही बुनती है, अपने मुंह से ही निकालती है, उसकी जाल जो है ना उसके मुंह से ही निकलती है और उसी में फंस जाती है। अगर उसको उस जाल से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, उस जाल को वापस मुंह में डालना पड़ेगा, तब वो उससे छुटकारा पा सकती है। इसलिए बाबा कहते तुमने ये जाल बनाई, अभी तुमको ही छूटना है, पर छूटना माना छोड़ना नहीं, छोड़ना भी नहीं है और फंसना भी नहीं है, ये एक कला है, छोड़ो भी नहीं और फंसो भी नहीं। फंसना सहज है, छोड़ना दो वो भी सहज है, छोड़ो तो छूटो, हाँ कहेंगे भाई सन्यासी बन गए घर बार छोड़ा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, छोड़ो सब घर से निकल जाओ, बाबा कहते छोड़ना भी नहीं है, लेकिन सब कुछ करते फंसना भी नहीं है, क्योंकि फंस गए तो फिर वही जाल बन जाएगी, अभी तो हिसाब किताब चुकतू करने का समय है, तो निभाना भी है लेकिन साक्षी दृष्टा हो करके करना है। कमल फूल समान जीवन, बाबा ने ये लक्ष्य दिया है। तो जब इस प्रकार से हमारा जीवन बन जाता है, हम न्यारे भी बन जाते हैं, प्यारे भी बनते हैं, छोड़ते भी कुछ नहीं है, फंसते भी कहीं नहीं है, साक्षी दृष्टा भी होकर रहते हैं, तो हम नए हिसाब किताब नहीं बनाते हैं। और जो पुराने हैं उनको चुकतू तो करना ही है, इसलिए छोड़ के जाएंगे भी कहाँ, पुराने हिसाब किताब तो खींचेंगे, तो वो भी पूरे करने हैं, चुकतू करने हैं। पर जितना पुराने हिसाब किताब चुकतू करने, उतना नया हिसाब किताब हमारा सतयुग त्रेता का भी तो तैयार करना है। मानो 84 जन्मों का हिसाब किताब यहीं ठीक करना है। जैसे किसी के सिर पर बहुत बड़ा कर्जा हो, तो उसको इतना कमाना है जो कर्जा भी सब चुकतू कर ले, और इतना आगे कमाना है जो उसकी कमाई भी बहुत बरकरार हो। तो कर्जा भी पूरा करना है और आगे की भी कमाई बढ़ानी है, तो कितना कमाना पड़ेगा? हाँ, कमाना पड़ेगा ना, क्योंकि केवल आगे की कमाई नहीं है, जब पिछला कर्जा है उसको भी चुकतू करना है। तो 63 जन्मों का कर्जा है हमारे सिर पर, कितने पाप किए होंगे 63 जन्मों में, एक जन्म में कितने किए होंगे, झूठ छल कपट निंदा चुगली बेईमानी हेरा फेरी सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पता नहीं क्या क्या किया होगा। तो एक जन्म के कितने कर्मों का हिसाब किताब है, और 63 जन्म तो कितना होगा सिर पर बोझ, है कि नहीं? तो वो भी चुकतू करना, इतनी कमाई करनी है, और 21 जन्मों के लिए कमाना है, क्योंकि वहाँ तो नहीं कमाएंगे, वहाँ तो केवल खाएंगे, तो यहाँ की कमाई वहाँ काम आएगी। 2 युग तक केवल खाना है, कमाना नहीं है वहाँ, पर यहाँ कमाना है। द्वापुर से तो गंवाते ही रहे, थोड़ा बहुत पुण्य किया बाकी पाप, और धीरे धीरे वो स्थिति आई कि पुण्य नाम का और पाप ही पाप, पुण्य के नाम पर भी पाप, ऐसा ही होता रहा, क्योंकि देह अभिमान में थे। तो इसके लिए फिर बाबा कहते सब संबंध मेरे से जोड़ो, क्योंकि मेरे साथ सर्व संबंध होंगे तब तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होंगे। जब तक मेरे साथ सर्व संबंध नहीं है तब तक हिसाब किताब आपके बनते रहेंगे, क्योंकि देहधारियों से देह के अभिमान से जो भी हम कर्म करेंगे वो पाप के खाते में जाएंगे, या तो मोहवश करेंगे, या तो लोभवश करेंगे, या तो ईर्ष्यावश करेंगे, नफरत वैर दुश्मनी के आधार से ही करेंगे, तेरे मेरे में फंस जाएंगे, तो पाप के खाता में जाएगा ना। अब बाबा कहते हैं कि पुण्य का खाता जमा करो, इसलिए बाबा ने हमें यह कर्मों की गुह्य गति भी समझा दी है। और अगर कुछ ऐसा हिसाब किताब आता है उसे घबराओ मत, डरो मत। कैसे डरो मत? ऊपर चले जाओ, न्यारे हो जाओ। बाबा मिसाल देते ना, हवाई जहाज क्या करता है, जैसे ऊपर जाता जाता है ना, तो नीचे का सब छोटा छोटा दिखाई देता है, फिर पहाड़ हो या मकान हो या कुछ भी हो, वो सब नीचे होते जाते हैं और वो ऊपर चला जाता है, और सब नीचे का छोटा छोटा दिखेगा, नीचे है तो सब बड़ा बड़ा दिखता है। तो आप अपनी स्थिति को ऊंचा बनाते जाओ, वो सब जो विघ्न लगते हैं वो सब गौण होते जाएंगे। पर ऊंची स्थिति कैसे बनाओ, उसके लिए बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक बनो, अर्थात जो पहाड़ समान विघ्न है उसको राई में बदल सकते हो बाबा के साथ से। बस बाबा कहा, बाबा की मदद मिली, हिम्मत रखी अपनी, वो पहाड़ राई बन जाएगा, वो विघ्न खत्म हो जाएगा, न्यारे प्यारे हो गए, विघ्न खत्म हो जाएगा। हम फंस जाते इसलिए विघ्न आते, इसलिए व्यर्थ संकल्प आते, इसलिए बाबा कहते छोड़ो तो छूटो। कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें, कैसे छूटे, ये क्यों सोचते हैं? क्योंकि देह अभिमान में फंसे। ये देह अभिमान बहुत विघ्न बनता है। इसलिए बाबा हमको कहते हैं बच्चे सब मेरे से संबंध जोड़ो। तो जब ये हमारी स्थिति बन जाती है, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हम संपूर्णता की ओर जाते हैं। हमारी दादियों ने यही तो किया ना, कितनी बातें आई होगी ब्रह्मा बाबा के आगे, कितनी बातें आई होगी, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कैसे निर्विघ्न बन करके हाँ आगे अपना पुरुषार्थ किया। बाबा यही कहते थे बच्चे ड्रामा देखते चलो, ड्रामा, न प्रश्न करो, न कोई आश्चर्य खाओ। प्रश्न करना, आश्चर्य खाना, ये कॉमन हो गया है आज की दुनिया में। अच्छा ऐसे हुआ क्या, अच्छा ऐसे, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, फिर प्रश्न क्या, क्यों, कौन, कहाँ, और व्यर्थ संकल्पों का बोझ सिर पर चढ़ाते रहते हैं। और बाबा कहते हैं तीन बिंदी लगा दो। तो तीन बिंदी कैसे लगेगी, जब ऊपर उठ जाएंगे। ये परिस्थितियां आई और गई, लेकिन मैं तो सदा हूं। तो विघ्न अगर आएंगे भी तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका निदान क्या है, वो हमको उसी वक्त बाबा की टचिंग से पता चल जाएगा। प्रश्न नहीं पूछते रहना, कई बार होता है ना समस्याएं समस्या समस्या ही खाली सुनाते रहते, ये समस्या वो समस्या। अच्छा वो तो पता है ना समस्या है, कलयुग माना ही समस्याएं, लेकिन इनका समाधान अगर नहीं सोचेंगे तो समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। इसका समाधान क्या है, समाधान क्या है? कई बार क्या होता है, विघ्न कोई बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम अपनी सोच से बड़ा बना देते हैं, है ना। इसीलिए कहावतें प्रसिद्ध हो गई, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और कई बार वो चूहा भी मरा हुआ और उसके लिए पहाड़ ही खोद लिया हमने। तो वो प्रश्न प्रश्न करके इतना दिमाग अपना खराब कर देते हैं, इतना सिर दर्द होने लगता है, इतनी चिंताओं में फंसे रहते हैं, और पता चलता है तो कुछ भी नहीं था कुछ था ही नहीं, है ना। बाबा मिसाल देते हैं, कई मिसाल है, बच्चा थोड़ा स्कूल से लेट आया, अभी आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया, और हमेशा नेगेटिव ही सोच चलते हैं। ये नहीं उस समय सोचेंगे हो सकता है खेल रहा होगा, हो सकता है किसी दोस्त के घर गया होगा, लेकिन क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट न हो गया हो, कहीं पर कोई ऐसी दुर्घटना न हो गई हो। आजकल तो ये भी डर लगता है कहीं अपहरण न हो गया हो, आजकल तो हाँ इतना डर रहता है। फिर और भी क्या क्या सोच लिया, हाय कहीं मर न गया हो। अब मर न गया हो इतने तक हम सोच लेते हैं, और वो थोड़ी देर में बच्चा आता है, डैड मम्मी मैं तो खेल रहा था, बात तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन कहाँ पहुंच गए, उसको मार भी डाला इतना तक। और उस समय वो समय श्वास संकल्प शक्ति कितनी बर्बाद हो गई, व्यर्थ हो गया ना सब कुछ। और वो भी क्यों हुआ, क्योंकि मोह के वश थे, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अब किसी और का होगा तो कहेंगे उनको आथत देंगे ना, कोई बात नहीं आ जाएगा आ जाएगा, पर मेरा है तो बताते ना किसकी मृत्यु होती है तो वो बहुत रोते हैं। तो हम उनको समझाने जाते हैं, भाई रो नहीं, आत्मा तो अमर है, आत्मा तो वापस आती नहीं है, आदि आदि कितना ज्ञान देते हैं। दूसरे के घर में किसी की मृत्यु होती है तो हम उनको बहुत ज्ञान देते हैं, पर हमारे घर में हुआ तो फिर क्या होता है, फिर वो हमको ज्ञान देने आते हैं रिटर्न करते हैं ना, रिटर्न करते हैं ना, हमने जो उनको दिया वो रिटर्न हमको करते हैं। तो वो उस समय हम अपने लिए ज्ञान क्यों नहीं यूज करते, लेकिन वो तो उनका था ना, ये तो मेरा है ना, मेरा। तो जहाँ मेरापन आया ना, वहां पर ये सब व्यर्थ चलता है। फिर फिर इसलिए बाबा कहते हैं मेरा मेरा कहाँ से आए, तो बाबा का था, बाबा का था, बाबा के पास गया, बाबा ने दिया। तो जब ये बुद्धि में आता है तो फुल स्टॉप लग जाता है, वो समस्या है लेकिन उसका समाधान यही है कि उसमें पॉजिटिव सोचो। क्या पॉजिटिव सोचो? चलो इसमें भी कोई राज होगा, इसको और ऊंची सेवा करने कहीं जाना होगा। लेकिन हम तो अपने स्वार्थवश सोचते हैं कि क्यों गया, इसकी और ऊंची सेवा होगी, तो और ऊंची सेवा करने गया तो यहाँ कैसे रुकेगा, इसीलिए और ही थोड़ा और ऊंचा सोचते हैं, तो फिर बुद्धि शांत हो जाती है। लेकिन अधिकतर हमारा अपना ही स्वार्थ होता है ना? कोई बहुत रोते हैं ना, तो हम उनको कहते हैं भाई मत रो, कहते हैं क्या करूँ, हाँ क्या कर, मेरा क्या होगा, वो कहाँ गया, वो अलग, वो बात भूल जाएंगे, फिर अभी मेरा क्या होगा, तो ये तो स्वार्थ हो गया ना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सब है तो कर्मों का खेल। इसीलिए बाबा ने हमको हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचना सिखाया है। और इस साल का जो थीम है हम लोगों का, इस संस्था का साल का थीम होता है, तो ये थीम क्या है, द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन का साल। हमारे जो भी कार्यक्रम अभी होंगे वो सब इसी थीम के आधार पर है, सकारात्मक परिवर्तन का साल। बातें तो आएगी लेकिन सकारात्मक परिवर्तन, क्योंकि हर पहलू के दो भाव होते हैं, आप उसको सकारात्मक रूप में देखो या नकारात्मक रूप में देखो। लेकिन सकारात्मक रूप में देखेंगे तो लगेगा कि चलो इतना थोड़ा सा हुआ, कल्याण हुआ, पर नकारात्मक रूप में देखेंगे तो ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चलता रहेगा। और सकारात्मक परिवर्तन है कि इसमें कोई राज था, कोई कल्याण था, यही सही था, तो मन शांत हो गया, जिसको बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक स्थिति। आज वरदान भी यही था ना, गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। महाराष्ट्र में गणेश की कितनी पूजा होती है, पर गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं इसीलिए गणेश का वो चित कुछ निकालेंगे भी तो स्वास्तिका रूप में निकालेंगे। तो स्वास्तिका का अर्थ क्या है, चारों युगों का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो आदि मध्य अंत का ज्ञान जब हमारी बुद्धि में आता है तो हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। कोई भी कर्म करने से पहले उसका आदि मध्य अंत सोचो, क्या इसका परिणाम हो सकता है। तो तीनों कालों को बुद्धि में रखते हैं तब हम सही कर्म कर सकते हैं, तब हम विघ्नों को पार कर सकते हैं। पर मान लो आ गया विघ्न, कोई गलत हो गया, तो उसे शिक्षा लेनी, और क्या करना है, हम रोते तो नहीं बैठेंगे ना, आगे बढ़ना है, जीवन एक यात्रा है ना, ये संसार एक यात्रा है, आगे बढ़ना है। तो मंजिल बाबा ने हमको बहुत ऊंची दी, आज भी बाबा ने कहा तुम एक्सपर्ट बन गए हो, आज की मुरली थी ना, तुम एक्सपर्ट बन गए हो, किस बात में एक्सपर्ट बन गए हो, हाँ मुक्ति, जीवन मुक्ति देने में, माना मुक्ति माना शांति, और जीवन मुक्ति माना सुख, तो सुख और शांति देने में तुम एक्सपर्ट बन गए हो। एक तो मुक्ति जीवन मुक्ति का हम लक्ष्य देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट कैसे बन जाते, कोई का मन बहुत अशांत है, अब आप एक्सपर्ट बन सकते हो, एक मिनट में उनको शांति दे सकते हो, कैसे, उनको कहो अशरीरी बन जाओ, अशरीरी, पर खाली अशरीरी बनने से इतना लाभ नहीं होगा, चलो मन शांत हो गया, लेकिन कब तक शांत होगा, फिर बाबा कहते हैं वो बाबा की याद उसमें रहे तब वो शांति की शक्ति अनुभव होगी, खाली ऐसे ही शांत हो गए उससे कोई शक्ति नहीं मिलेगी, वो उस समय लगेगा कि हाँ शांति मिली, लेकिन वो शक्ति रूप में तब कन्वर्ट हो जब उस शांति में बाबा की याद हो। इसलिए बाबा कहते हैं बस अशरीरी बन जाओ, मैं आत्मा देह से न्यारी। जब देह से न्यारी है तो शांत है, रात को नींद आ जाती है गहरी तो शांत है, लेकिन ये नींद नहीं है, ये अभ्यास है। शरीर के भान को से न्यारा बनना, जैसे वस्त्र को ढीला करना कि मैं आत्मा यहाँ भृकुटि के मध्य में विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ, और वो विघ्न से ऊपर चले गए। फिर मैं, जैसे दादी जानकी नशे से कहती थी, मैं कौन मेरा कौन, इतने नशे का वो वाक्य है जिसके आधार से हम ऊंचे चले जाते हैं, मैं कौन मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये तीन बातें जरूर दादी कहती थी, तीन बार ओम शांति कह करके। तो दादी से हम यही प्रेरणा लेते थे, मैं कौन मेरा कौन मुझे क्या करना है, यही लक्ष्य मिल गया। तो इस ब्राह्मण जीवन के आगे क्या है, फिर हमें संपूर्ण बनना है, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने। कैसे संपूर्ण बने? पुरुषार्थ जो किया उसके आधार से तो संपूर्ण बने, ऐसे तो नहीं कि यहाँ धन लाएंगे तब संपूर्ण बनेंगे। मम्मा तो धन लेकर ही नहीं आई, मम्मा ने तो कभी साक्षात्कार ही नहीं किया उस दिन भी बाबा ने कहा। कई समझते हैं साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, ये भगवान करा रहे, भगवान का कार्य है, पर मम्मा को ने तो कभी साक्षात्कार नहीं किया। और ये जो साक्षात्कार करते थे वो साक्षात्कार कि जो किया उसको समझते नहीं थे, तो मम्मा से आके पूछते थे, मम्मा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो मम्मा समझाती थी, जबकि मम्मा ने कभी साक्षात्कार नहीं किया। बाबा ने तो फिर भी किया, पर वो ज्ञानी तो आत्मा थी और ज्ञान के आधार से सब बातें समझती थी। इसीलिए जिनके मन में जो समझ नहीं थी वो मम्मा समझ देती थी। तो इसीलिए धन से हम ऊंच पद पाएंगे ऐसी बात भी नहीं है, धन से ज्यादा तन है और तन से ज्यादा मन है, धन से ज्यादा तन है और तन से ज्यादा मन है। तो प्राप्ति हमारी किस में है? तीनों ही जरूरत है, लेकिन धन से ज्यादा तन हो गया। धन अगर हमारे पास नहीं है तो तन से सेवा अगर करते हैं तो धन से सेवा करने वालों से भी आगे प्राप्ति हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। और तन और अगर मन साथ में है तो डबल प्राप्ति। पहले धन नहीं है, जो आज भी बाबा ने कहा कल का ना, जो गरीब है चलो एक रुपया देता है और धनवान हजार रुपया देता है तो भी बराबर है। किस आधार पर? क्योंकि उसकी कमाई उसी अनुसार है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये लक्ष्य दिया है यहाँ। तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हमको करना है, ये हमारा आगे हमारा एम है, ब्रह्मा बाप समान बनना। उसके लिए संपूर्ण, तभी हम संपूर्ण बन सकेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने। संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, दो शब्द बाबा यूज करते हैं, संपन्न और संपूर्ण, दोनों में क्या अंतर है? संपन्न किसको कहेंगे, संपूर्ण किसको कहेंगे, अंतर है या एक ही बात है? अंतर है ना, क्या अंतर है? संपन्न माना और संपूर्ण माना, जैसे चंद्रमा होता है फुल मून, पूर्णमासी की रात, वो संपन्न भी होता है संपूर्ण भी होता है। संपन्न माना प्रकाश में संपन्न, फुल लाइट, नहीं तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो भी आते हैं दिन तो उसमें पूरी लाइट नहीं होती है, लेकिन पूर्णमासी आई माना वो लाइट फुल लाइट होती चंद्रमा में, उसको कहेंगे संपन्न, फुल कंप्लीट। और फिर संपूर्ण, संपूर्ण माना पूरा गोलाकार, ये संपूर्ण हो गया है, अर्थात प्रकाश में संपन्न और आकार में संपूर्ण, जिसको दूसरे शब्दों में हम देवताओं की जब महिमा करते तो क्या कहते हैं, सर्व गुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण। तो गुणों में संपन्न, कोई गुण की कमी न हो, पूछो अपने आप से ये गुण मेरे में कितना है। मैं एक बहन को देखती थी, उसके पास गुणों की लिस्ट है, वो हमेशा क्या करती है, वो लिस्ट निकाल के देखती है मेरे में अभी तक किस गुण की कमी है, किस गुण की कमी है, मेरे में क्या अवगुण है ये नहीं, पर मेरे में किस गुण की कमी है, अंतर्मुखता की कमी है तो अंतर्मुखता भरनी है, गंभीरता की कमी है गंभीरता भरनी है, धैर्यता की कमी है धैर्यता भरनी है। हर घंटे घंटे वो लिस्ट देखती है, उनका ये तो बहुत अच्छा ये अभ्यास है। तो सर्व गुण संपन्न बनना है, क्योंकि देवता बनना है ना, और 16 कला संपूर्ण, तो 16 कला माना पवित्रता की कला, इतनी हमारी संपूर्णता हो, एक भी कला पवित्रता की कम न हो। चलो कर्मणा में तो ठीक है, वाचा में भी ठीक है, पर मनसा तक और यहाँ तक बाबा कहते हैं स्वप्न तक, स्वप्न भी अगर कुछ ठीक नहीं है, इसका मतलब संस्कारों में है अभी तक कुछ न कुछ बात, तो स्वप्न भी इतने ही पवित्र हो तब कहेंगे कि हाँ संस्कारों में भी परिवर्तन आया है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को इतना संपूर्ण और संपन्न बनाते हैं, और ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप का आचरण, उसको ब्रह्मा क्या कहेंगे हैं, आचरण है, तो ब्रह्मा का आचरण उसको बदल के ब्रह्मचर्य कर दिया। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मा का आचरण, और वो जो ब्रह्मा ने किया, जो आचरण उनका था, उसी प्रकार मेरा भी आचरण हो। तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म भोज और ब्रह्मचर्य, वो सब ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आदि में है ब्रह्मा, आदि रच, आदि है जो सृष्टि की रचना करता, और उसमें हम पहली रचना है ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले और वही ब्रह्मा को फॉलो करने वाले मुख वंशावली ब्राह्मण देवता बनते हैं, तो उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है। फिर बाबा जिम्मेदारी भी देते हैं, बच्चे तुम्हारे द्वारा ही मैं करता हूँ, बाबा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सारी दुनिया को फट से बदल दे, है ना, लेकिन बाबा क्या ऐसे नहीं बदलेंगे, एक एक का सहयोग चाहिए, है ना। कई लोग कहते हैं आप लोग इतनी मेहनत करते हो, अगर एक कोई अरबपति आपके पास आ जाए और वो सारा आपको सरेंडर कर दे, सब कुछ समर्पित कर दे, तो आपकी तो बहुत जल्दी सेवा बढ़ जाएगी, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, वो अरबपति ऐसे आएंगे नहीं, आएंगे, अगर एक का ही भाग्य बन जाए तो बाकी का भाग्य कब बनेगा वो कैसे भाग्य बनेगा। इसीलिए बाबा सबका भाग्य बनाते हैं, हर एक अपनी अपनी अंगुली देता, उस दिन था ना बाबा ने कहा गोवर्धन पर्वत खाली एक भगवान ने थोड़ी श्री कृष्ण ने उठाया, लेकिन सब ने सहयोग दिया, तो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। और हमारी ये जिम्मेदारी, इतनी बाबा ने जिम्मेदारी दी है, तो यहाँ संपन्न, यहाँ संपूर्ण, ब्रह्मा बाप समान, तब कहेंगे फरिश्ता, और जब फरिश्ता बन गए तो देवता तो बनेंगे ही, क्योंकि फर्श से रिश्ता खत्म। तो लक्ष्य भी पहचाना और उद्देश्य भी समझ लिया, और कैसे विघ्नों को जीते वो भी समझ लिया, ठीक है ना। तो सबको सुख शांति देने की जो विशेषता है, कला है, वो भी बाबा ने सिखा दी। जिम्मेदारी भी समझ ले, क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी भी रोशनी मिल गई। तो हम क्या करेंगे अभी? अपना श्वास, अपना संकल्प, अपना समय, अपनी शक्ति, सबको सफल करेंगे। कुछ भी व्यर्थ न जाए, एक कुछ भी एक पल भी व्यर्थ गया माना कितनी प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। बस ये सदा बुद्धि में रखो। और इसलिए आप सब मधुबन में आए हो वो शक्ति भरने के लिए, ठीक है? हाँ, तो बट्टी माना पकना, बट्टी माना परिवर्तन होना। आग में कुछ भी चीज पड़ती है ना तो क्या होता है? बदल जाता है, सब बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है ना। कोई भी चीज डिपेंड्स, क्या चीज है। आग में अगर सोना डालते हैं तो क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। आग में अगर कोई नरम चीज डालते हैं वो स्ट्रांग हो जाती है ना, मिट्टी डालते हैं तो वो ईंट बन जाती है। आग में कोई हार्ड चीज डालते हैं ना, सब्जी डालते हैं बैंगन टमाटर आलू, तो क्या होता है? नरम हो जाता है, उसका वो रूप बदल जाता है। आग में कचरा डालते हैं, हाँ कचरे को आग जलाते हैं ना, आग लगाते हैं तो वो धुआं बन के उड़ जाता है। कोयला डालते हैं तो क्या होता है? काला काला कोयला, वो क्या बन जाता है? राख बन जाता है। तो परिवर्तन, तो ये भी बट्टी माना परिवर्तन। इतना परिवर्तन कर लो जो वापस जाओ तो लोग सबको लगे अरे ये तो कितना बदल गया, ऐसा अनुभव अपने अंदर करना, ठीक है? रोज आपको एक स्वमान मिलेगा, उस स्वमान का सारा दिन मन में लाओ और वो स्थिति बनाओ तो देखो। हाँ, 3 दिन के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि हमने जो यहाँ पाया वो इतने सालों तक नहीं पाया, ये अनुभव करके जाना, ठीक है? चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी इंद्रा बहन आई है, वो सुनाएगी।
कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर दिल हुआ पड़ा है। कभी हारना न, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना न, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
भक्ति के लक्ष्य और उद्देश्य से दीदी ने आप सभी को परिचित कराया। एक हाथ हिलाकर दीदी का शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।